चैप्टर नंबर 6 है, टाइटल अमृत वेले शक्तिशाली है। 6.1 भक्त बनने के बजाय स्वस्थिति को समर्थ बनाओ। अमृत वेले याद में बैठते हो तो बिंदु रूप अथवा फरिश्ता स्वरूप स्थिति में बैठो, परंतु इस स्वरूप में स्थित होने में मेहनत लगती है। कारण क्या होता है? स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस रूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग के समान हो जाता है। जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे होते, उसी समय वायुमंडल खुशी का होता है। थोड़े समय का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। 6.2 हेडिंग, स्नेह से बैठो, नियम व हट से नहीं। बाप से अमृत वेले का मधुर मिलन व रू रहन करने के समय कई बच्चे नियम पूर्वक बहुत हट से बैठते हैं। सिर्फ वायदा निभाते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन प्रीत की रीत नहीं निभाते हैं। उस समय बाप दादा के साथ अगर सैर करने निकलो तो चारों तरफ का दृश्य आश्चर्यजनक भी होता है और हर्षित करने वाला भी होता है। बहुत थोड़ी आत्माएं आकर्षण करने वाली होती हैं। अगर फिल्म निकालो तो वह बहुत ही मनोरंजन होगा। उस समय बच्चे बाप को खुश करने के बहुत खेल करते हैं और कई बच्चे भक्ति बन जाते हैं और वो भक्त बड़ा अच्छा खेल करते हैं। कौन सा? बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते हैं। भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त परमात्मा को मनुष्यात्मा बना देते हैं। अब चेक करो कि इनमें से आपकी स्थिति कौन सी है। अपने आप को ज्ञान रूपी दर्पण में देखकर चेक करो। प्रतिदिन अपने आप को देखो व पोज और पोजीशन को चेक करो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहनाते हैं। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वह अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा सिंगारे हुए होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार अपने इष्ट को माला से सजाने का करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुना स्नेह की वरदानों की शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। 6.3 हेडिंग, भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति, रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों का वो गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। कितने प्रकार के सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसे श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेज गिनती करो कि कितनी है। उसी टाइटल्स की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेस को धारण करना, कभी विश्व कल्याणकारी की, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान की और कभी सुदर्शन चक्रधारी की ड्रेस पहनो। जैसा समय जैसा कर्तव्य वैसे ड्रेसेज धारण करो, साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो या भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हों, यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्मृति हो, या हाथों के कंगन हो गए, कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार है। पांव द्वारा कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठें, यह पांव का श्रृंगार है। तो अमृत वेली से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार करेंगे, तो जैसे सत्ययुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की रजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब माया जी संगम युग स्वराज अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय यह पांच तत्व पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। अपने चार्ट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्वशक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह श्रृंगारी मूर्ति भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो ना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार ही श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और श्रृंगारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना, अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना, ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वे ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। 6.4 भिन्न भिन्न तिलक लगाओ। 6.4.1 हेडिंग विजय का तिलक। सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्मा अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है, कभी मिट तो नहीं जाता, माया कभी मिटा तो नहीं देती। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो, तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो, और अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही नहीं, अगर हूं तो सारे दिन में विजय प्राप्त की या नहीं की, ये चेक करो। 6.4.2 हेडिंग कंबाइंड स्वरूप का तिलक। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती हैं। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे, यह तो साथ का तिलक है। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है, कभी लगाना भूल जाता कभी मिट जाता, जो सुहाग होता है साथ होता है वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो, सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं। इसी साथ की स्मृति द्वारा तिलक लगाओ। 6.4.3 हेडिंग तीन बिंदियों का तिलक। सदा अमृत वेले स्वयं को तीन बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है, और भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे, और सुहाग तथा भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व है, क्योंकि तिलक स्मृति की भी निशानी है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने तीन बिंदियों का तिलक अर्थात तीन स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक हैं और तीनों ही बिंदी सहज हैं। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना, तो मैं आत्मा हूँ। यह स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है, जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है, तो बीत जाता है, इसलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना, तो यह तीनों स्मृति सदा हैं, तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो वो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी अनुभवी होना, स्मृतियां रहती हैं, होना ही है, नथिंग न्यू, पहले से ही जानते हैं कि यह होना है, तो विचलित नहीं होंगे। रोज अमृत वेले अपने आप को तीन बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे, यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं, इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन वचन और कर्म में लाओ। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। आप सब, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप की बिंदी। यह तीन बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। तीन बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों, क्या ही हलचल है, तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं, जिस समय कोई बात होती है तो उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गए। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान, तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है, और साक्षी हो करके देख कर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी है, थी छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, तो बड़े हुए ना, बड़े के आगे समस्या नहीं है लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। रोज अमृत वेले स्त्री स्मृति स्वरूप के अविनाशी तिलक को चेक करो, तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। तीन स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप या समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं, माया के पांच रूप दासियों के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। 6.4.4 हेडिंग मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक दो। सारा दिन तिलक धारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। 6.4.5 हेडिंग स्मृति का तिलक। जैसे भक्ति मार्ग में स्नान के बाद तिलक लगाते हैं, ऐसे आप बच्चे अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के पश्चात स्मृति का तिलक लगाओ, लेकिन अमृत वेले या स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अगर कोई तिलक देते भी हैं तो फिर मिटा भी लेते हैं, जैसे कईयों की आदत होती है बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देते, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही यह भी बात है, कोई को तिलक देना भूल जाता है, कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं, लेकिन यदि अमृत वेले का या स्मृति का दिए हुए तिलक सदैव कायम रखो तो सुहाग श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। 6.4.6 हेडिंग सफलता का तिलक। भाग्य विधाता बाप व्याघ्रकारी बच्चों को रोज अमृत वेले सफलता का तिलक लगाते हैं। बाप रोज सभी सेवा केंद्रों पर आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाने के लिए चक्कर लगाते हैं। अगर बच्चे सोए हुए हैं तो उनकी गफलत है। जैसे दिवाली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, वहाँ लक्ष्मी का आह्वान करते और यहाँ लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान करते, तो ज्योति जगा कर स्वच्छता से बैठो तो बाप आएंगे। 6.5 बाप से सर्व वरदान ले लो। 6.5.1 बाप से वरदान लेने योग बनो। हेडिंग अमृत वेले बाप दादा विशेष उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेले बाबा रोज बच्चों को वरदान देते हैं। अगर रोज बाबा से वरदान लेते रहें तो कमजोरियां आएंगी ही नहीं, तो आत्मा को सारे वरदान लेने योग्य बनना चाहिए। बाबा से प्यार है तो आत्मा बाप से सर्व वरदान लेने के योग्य बन जाती है। 6.5.2 हेडिंग अमृत वेले से ही वरदानों को स्मृति में लाओ। बाप द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन वरदानों को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना तो वरदान कायम रहेंगे। दिल शिकस्त कभी नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों में बिंदी निरंतर चमक रही है, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो, होना मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, सहज है। अच्छा, तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। 6.6 बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। 6.6.1 हेडिंग भोले भंडारी बाबा। अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियां और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार रहने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खान, सर्व शक्तियों की खान है, बच्चों के लिए खुली। 6.6.2 हेडिंग हर संबंध का सुख और नष्टो मोहा बनो। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है, सिर्फ बाप के संबंध से नहीं लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। बाप को अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना, तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्ट मोह बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप सदैव अमृत वेले स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ ऐसे अधिकारी। समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं, जो भी काम हो तो साकार साथी ना याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्ट मोह है। 6.6.3 हेडिंग, एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल्प वंचित रह जाएंगे। समय पर व निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है, उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं, अमृत वेले से रियलाइजेशन को शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हैं, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना के बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है? यह अनुभव करो। माता का संबंध क्या है? बाप का संबंध क्या है? सखा और बंधु का संबंध क्या है? सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अब ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब नहीं? तो अपने आप को चेक करो, किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए। 6.7 दिव्य बुद्धि को यूज करो। 6.7.1 दिव्य बुद्धि को यूज करने के अभ्यासी बनो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार में लाना हर एक के ऊपर है। यह बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोगों तक जाने वाली है। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोग का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है अमृत वेला केयरफुल वन। स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं? यह लिफ्ट सिर्फ संगमयोग पर ही प्राप्त होती है। 6.7.2 रूहानी रेल का अभ्यास करो। अमृत वेले यह अभ्यास करना है कि हम जैसे अवतरित हुए हैं। कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परमधाम का निवासी हूँ अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। यह तीन स्टेज पर जाने की प्रैक्टिस हो जाए, जैसे कि एक कमरे में दूसरे कमरे में जाना होता है। तो अमृत वेले यह विशेष अशरीरी भाव का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष यह अनुभव हो ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ, यह रूहानी रेल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म बतन फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहां बुद्धि लगाना चाहे वहां ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। 6.7.3 दिव्य बुद्धि को चेक कर, ठीक रखो। दिव्य बुद्धि का विमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। जैसे आजकल रिफाइन से भी डबल रिफाइन चलता है ना, तो बाप दादा का यह दिव्य बुद्धि डबल रिफाइन साधन है। जरा भी मनमत परमत का कचरा है तो ये क्या क्या होगा, ऊंचे जाएंगे या नीचे। तो यह चेक करो कि दिव्य बुद्धि रूपी विमान में सदा डबल रिफाइन साधन है, बीच में कोई कचरा तो नहीं आ जाता। नहीं तो यह विमान सदा सुखदाई है। जैसे सत्योग में कभी भी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध है। यहाँ से कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। यहाँ से संगम योगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखे से मुक्त है। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सेफ है, आपदाओं से मुक्त हैं। इसलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखो। समझा इस गिफ्ट का महत्व। गिफ्ट सभी को मिली है या किसी की रह गई है, मिली तो सबको है ना, सिर्फ संभालने आती है या नहीं वह आपके ऊपर है। सदा अमृत वेले चेक करो, जरा भी कमी हो तो अमृत वेले ठीक कर देना। कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अगर सन ठीक नहीं कर सकते हो तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेले ही ठीक कर दो। 6.7.4 हेडिंग मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनो। अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। अच्छा, ओम शांति।